वेद काम की आज 19वें अध्याय में हमें और आशा है कि हम इस पूरी पत्री को समाप्त करेंगे। 21 अध्याय तक जब हम देखते हैं तो 21 अध्याय के बाद से बिल्कुल प्रेत काम की पुस्तक की कहानी अलग हो जाती है। और जब हम पिछले दिनों में देख रहे थे, मैंने बार बार दोहराया है ताकि हम इस बात को समझ सकें, जान सकें और याद कर सकें, पौलुस किस प्रकार से अपने इस को लिखता है और ताकि हम और अधिक परमेश्वर के वचन को सीख सके, समझ सके। तीन मिशनरी यात्राओं का वर्णन है, तीन सुसमाचार प्रचार यात्रा का वर्णन है जो पौलुस के द्वारा की गई। पहले अध्याय से 12 अध्याय तक हम पतरस के बारे में पाते हैं और फिर 13 अध्याय से जाकर के हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस की सेवा आरंभ हो जाती है। और 13 अध्याय के 3 पद से लेकर 15 अध्याय के 35 पद तक पहली पौलुस के द्वारा सुसमाचार प्रचार की यात्रा सेवा है। दूसरा 15 अध्याय के 36 पद से लेकर 18 अध्याय के 22 पद तक दूसरी सुसमाचार या मिशनरी यात्रा पौलुस की है, जिसको हम पिछले हफ्ते में समाप्त कर चुके हैं। और तब तीसरी जो यात्रा है वो 18 अध्याय के 23 पद से लेकर के 21 अध्याय के 16 पद तक है, जिसमें हमने पिछले हफ्ते आरंभ किया था 18 अध्याय से। और इन्हीं तीनों यात्राओं में न केवल पौलुस सुसमाचार प्रचार करता है, लेकिन परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा पूरी होती है जो प्रेरित काम उसके पहले अध्याय और उसके 8 पद में है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। और हम उसी बात को देख रहे हैं प्रेरित काम में। दूसरे अध्याय में यरूशलम में कलीसिया स्थापित होती है और यरूशलम के इर्द-गिर्द सुसमाचार प्रचार किया जाता है। जैसे हम 8वें अध्याय में आते हैं, यरूशलम से अब सुसमाचार प्रेरितों के द्वारा सामरिया में पहुंचता है और सामरिया में पहुंचने के बाद फिर जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं अन्य जाति के बीच में पहुंचता है, यहूदियों में पहुंचता है और फिर इस रीति से दुनिया के छोर छोर तक ये सुसमाचार पहुंचता है, जो रोम है और एशिया का अलग अलग स्थान है उसमें पहुंचता है। और वही चीज बहुत कर्म से देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा हो रहा है, जो कहा है पूरा। पिछले बार जब हम 18 अध्याय को देख रहे थे तो हमने मुख्यतः अपुल्लोस के बारे में देखा था और अकिला प्रिस्किला के बारे में देखा था। और अकिला प्रिस्किला किस प्रकार से पौलुस के साथ उन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को सेवा के लिए समर्पित किया और पौलुस के साथ मिलकर के सेवा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और तब हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस कुछ समय इफिसस में रहता है, लेकिन इफिसस में रहने के बाद फिर वो अंताकिया वापस जाता है और अंताकिया में कुछ समय रहता है। रहने के बाद 23 पद में फिर उसके मन में आता है कि मुझे वापस आगे सुसमाचार प्रचार की यात्रा में जाना है। और फिर 23 पद से वो तीसरी मिशनरी यात्रा आरंभ होती है जो 18 अध्याय के 23 पद से, 18 अध्याय के 24 पद से लेकर के हमने पिछली बार देखा था अपुल्लोस के बारे में किस प्रकार से अकिला प्रिस्किला अपुल्लोस की सहायता करते हैं, उसको सही शिक्षा देते हैं क्योंकि वो यूहन्ना का प्रचार कर रहा था, यूहन्ना का बपतिस्मा दे रहा था और वो उसको समझाते हैं। और तब उसके बाद जब 19वें अध्याय में आते हैं, अब यहाँ पर पौलुस इस इफिसस में पहुंचता है, इफिसस की कलीसिया की स्थापना होती है और इफिसस जो है वो एशिया का एक बहुत ही मुख्य नगर था। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे तीसरे अध्याय का अध्ययन करते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा तीसरा अध्याय, और उस अध्याय में हम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं जो एशिया की कलीसिया है, जहां पर यूहन्ना उन 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिख रहा है। तो ये इफिसस केंद्र में है और उसके इर्द गिर्द चारों ओर ये अन्य कलीसियाएं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस इफिसस के द्वारा ही कई सारे स्थानों में सुसमाचार प्रचार पहुंचा था, क्योंकि पौलुस सबसे अधिक समय इफिसस में रहा। 2 साल निरंतर रहा, कुछ और समय रहा, फिर कुछ और समय रहा और लगभग अगर गिना जाए तो लगभग उसने 3 साल रह करके इफिसस में सेवा की और 3 साल रहते हुए उसने सुसमाचार वहां से कई जगह क्षेत्र में पहुंचाया। तो जो आज हम देखना चाहेंगे 19 अध्याय में 41 पद में हम इनको तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं विशेष रीति से। पहला भाग जो हम देखते हैं जो मुख्य भाग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए पहले पद से लेकर के 11 पद तक किस प्रकार से पौलुस इफिसुस में आता है और इफिसुस में किस प्रकार से सुसमाचार प्रचार करता है और वहां पर एक बहुत बड़ी आश्चर्यता कह दीजिए या समस्या कह दीजिए या लोगों के अंदर अभी तक पूरी शिक्षा नहीं है उस बात की शिक्षा की पूर्णता के लिए कि पवित्र आत्मा के बारे में वो वहां शिक्षा देते हुए वो उस बात को करता है। तो अगर हम ये कहें कि पहले पद से लेकर के 11 पद तक यूहन्ना के शिष्य हैं और पौलुस यूहन्ना के शिष्य को एक शिक्षा देता है और खास से जो पवित्र आत्मा के संबंध में है जो पवित्र आत्मा के संबंध में, तब उसके बाद जब हम देखते हैं किस प्रकार से 12 पद से लेकर के पौलुस प्रचार कर रहा है, लेकिन वहां पर 17 पद तक दूसरे भाग को देखते हैं जहाँ एक स्किवा नाम करके है जिसके 7 पुत्र हैं और वो यीशु का नाम लेके कुछ छल करते हैं, लेकिन किस प्रकार से दुष्ट आत्मा उनका सामना करते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर वहां पर पौलुस के द्वारा क्या काम करता है। तो स्किवा का दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना या उसको ताड़ना पाना। तब उसके बाद हम 18 पद से लेकर के और आगे बढ़ते हैं और खास तौर से 41 पद तक एक और मुख्य विषय है। जब 18 पद से वहां के आते आगे चलते जाएंगे तो एक मुख्य विषय है जो अब पौलुस इफिसुस में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करता है क्योंकि वहां शिक्षा दे रहा है और वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसके पुजारी को जिसके लोगों से उसका सामना होता है। तो हम क्रम से इसको देखने का प्रयास करेंगे और आगे समझते चले जाएंगे। तो पहले हम जब सबसे आगे बढ़ना चाहेंगे किस तरीके से पहले पद से लेकर के 12 पद तक जहां पर यूहन्ना के शिष्य हैं। अब पौलुस जब यहां पर आता है तो लिखा हुआ है ऐसा हुआ कि जब अपोलुस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के प्रदेश से होता हुआ इफिसुस में पहुंचा और वहां पर उसे कुछ चेले मिले। अब ये चेले कौन थे? ये चेले यूहन्ना के चेले थे। क्योंकि जब हम 18 अध्याय पढ़ते हैं वहां पर भी हम देखते हैं जो अपोलुस जिनके बीच में सेवा कर रहा था वो भी यूहन्ना के चेले थे। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने प्रचार करना आरंभ किया था, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है, और बहुत सारे लोग उसके वचन को सुनकर के उसके पीछे आ रहे थे और फिर वो यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा ले रहे थे और यूहन्ना उनको बपतिस्मा दे रहा था। यद्यपि यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद एक और आएगा जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो मैं तो तुम्हें केवल जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, वो तुम्हें जल के साथ साथ आग और आत्मा से भी बपतिस्मा देगा। तो लेकिन ये लोग थे जो यूहन्ना के शिष्य, और बहुत सारे यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ लिए थे। जब यूहन्ना उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं सुसमाचार को तो हम देखते हैं कि वहां पर एक स्थानांतरण है कि यूहन्ना अपने सेवा में पीछे हटता है और तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे शिष्य हो जाते हैं, कई लोगों का नाम हम पहले अध्याय पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग उसी यूहन्ना पर विश्वास करते थे, यूहन्ना के शिष्य को जानते थे, संभवतः चूंकि अभी सुसमाचार फैला नहीं है और ये लोग फैल गए हैं तो अभी भी वो यूहन्ना के का बपतिस्मा ले रहे हैं और यूहन्ना के वचन को सुनते हुए अपने जीवन पर विश्वास कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, लेकिन पूरे ज्ञान से वे अभी अनभिज्ञ हैं, पूरे ज्ञान से वे अनभिज्ञ हैं। और पिछली बार भी हमने कुछ बात को देखा था। अब तब यहाँ पर दूसरे पद में 19 अध्याय के दूसरे पद में उसने उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया? पौलुस इन लोगों से एक प्रश्न कर रहा है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उनका उत्तर क्या था? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा है। जैसे मैंने भी समझाया कि ये लोग वो थे जो यूहन्ना के सुसमाचार पर विश्वास करते और शायद बहुत दूर दूर तक फैल गए थे, वो अभी तक उनको और दोबारा सुसमाचार सुनने का मौका नहीं मिला था, पवित्र आत्मा बारे में ज्यादा उनको शिक्षा नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिला था, इसलिए वो कह रहे हमने तो उसके बारे में सुना भी नहीं। ये प्रश्न जो पौलुस कह रहा है क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, आज इसी प्रश्न को आज कई बार कई लोगों को सामना करना पड़ता है। और मेरे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे और आपको सचेत और सावधान रहना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा मैं समय लूंगा ताकि हम एक बार पुनः समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। और जब यहाँ पर कहते हैं कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आज भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, और तब कहते हैं अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आपको अन्य भाषा बोलनी आना है, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो इसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है या आपको पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कब, कैसे, क्या, क्यों, ये सारी बातों को मैं समझना है। लेकिन यहां की स्थिति को समझिए, प्रेतों काम में चार केवल एक स्थल है जहां पर पवित्र आत्मा के बारे में हम एक ऐसी शिक्षा को पाते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें मिला गया और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पहला स्थल है जो प्रेत काम उसका दूसरा अध्याय में पाते हैं जहां पर कलीसिया की स्थापना हुई। लेकिन ध्यान दीजिए कि वहां पर एक बात थी, जब वे अन्य भाषा बोल रहे थे, जब वे अन्य भाषा बोलते दूसरा अध्याय के 11 पद से अगर आप पढ़ेंगे प्रेत काम दूसरे अध्याय में, वे सब अपनी भाषा सुन रहे थे और समझ रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी बोला जा रहा है वे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अन्य भाषा जब भी बोली जाती है, पौलुस इसीलिए आगे चल करके क्रूंती में शिक्षा देता है कि उसका अनुवाद किया जा सके, और यदि अनुवाद ना हो तो व्यक्तिगत रीति से अकेले में आप अन्य भाषा बोलिए, उससे कलीसिया को डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए, कलीसिया किसी प्रकार से भ्रमित ना होने पाए। पहला क्रूंतियों उसके 14 अध्याय में इसकी बहुत अच्छी स्पष्ट शिक्षा है, पौलुस पूरी रीति समझाता है, और अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह से ध्यान से अध्ययन करें। लेकिन यहाँ पर क्या हो, तो दूसरा स्थान, पहला स्थान वो था, दूसरा स्थान प्रेरित काम उसका 8वां अध्याय जहां पर सामरियों के ऊपर पवित्र आत्मा होने लगे। अब पहले यहूदी थे, अब सामरी थे, क्योंकि सामरी और यहूदी में विभाजन था, मतभेद था। यहूदी अपने आप को ऊंचा समझते थे, सामरियों को नीचा समझते थे, उनकी परछाई नहीं पड़ना चाहिए थी, ऐसा करते थे, छूट कर रखते थे, और इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा मिला ताकि वो विभाजन की दीवार है वो हट जाए और वो परमेश्वर की कलीसिया में सब लोग समान हो जाए। ये कारण था। तीसरा स्थान हम पाते हैं जो आगे चल के 10वें अध्याय में है, जहां पर अन्य जातियों के बीच पवित्र आत्मा मिला गया, जो कुरनेलियुस के परिवार उसके आगे लिखते हैं। और वो था, तो पहले में यहूदी है, दूसरे में सामरी है, तीसरे में अन्य जाति है। यहाँ पर ये लोग है जो यूहन्ना के शिष्य है, जिन्होंने शायद अभी तक सुना नहीं है, लेकिन अब उनको यहूदियों के शिष्यों के नहीं चलना है, अब उनको यीशु के शिष्यों पर चलना है, यीशु के शिष्य शिक्षाओं को अपनाना है और यीशु के बपतिस्मों को अपनाना है, क्योंकि यीशु यूहन्ना से बड़ा है। जो काम यूहन्ना ने ही नहीं करा, यूहन्ना ने केवल मार्ग तैयार किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं मार्ग बने, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग जीवन सत्य मैं हूं। अब यूहन्ना की उपासना की जरूरत नहीं है, यूहन्ना के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की। और इस चीज को स्पष्ट करने के लिए पौलुस उन लोगों को जो भ्रमित हैं, अभी भी पूरी शिक्षा को जानते हैं, इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। और तब जब वही घटना घटती है ताकि उस बात को समझ सके कि हाँ हमें पवित्र आत्मा मिल गया है। इसके बाद आप इस अध्याय के बाद कहीं भी आप और दूसरी घटना को नहीं पाते, तो इसलिए कहा जाता, ध्यान दीजिए, इसलिए कहा जाता है कि ये चार घटनाएं एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है या ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको परमेश्वर होने दिया है, और उस समय जबकि कलीसिया स्थापित हो रही थी और कलीसिया बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने इस प्रकार की चीजों को नहीं होने दी। तो आप भ्रमित ना हो, हम इसको और समझने का प्रयास करेंगे आज परमेश्वर के वचन के अनुसार। तब लिखा है तीसरे पद में, तब उनका, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। इस पर पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो ये कहकर लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि यीशु पर विश्वास करना है। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने लगे तथा नबूत करने लगे, वे लगभग 12 पुरुष थे। एक और बात, जहां कहीं भी पवित्र आत्मा उंडेला गया वहां समूह में उंडेला गया, एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, एक अकेले के ऊपर नहीं, चारों स्थलों में समूह है, कम से कम 12 लोग, कम से कम 10 और उससे अधिक लोग। बात को देखो, आजकल एक के ऊपर हाथ रख करके ठीक है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, सिर पर करेंगे, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हम छुएंगे तुम नीचे पीछे गिर जाओगे, ये वचन के अनुसार है। पीछे गिरना बाद पौलुस को जब परमेश्वर छुआ था पौलुस औंधे मुंह गिरा है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो हम औंधे मुंह के परमेश्वर के सामने उसके चरणों में गिरते हैं। सो हमें इन सारी चीजों को समझना है जो आज दुनिया में हो रही है और ये होता चला जाएगा। बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वचन हमारा आधार है हमारे जीवन में। हमें जीवन को वचन को समझना है, वचन को सीखना है, वचन को जाना है और वचन को दूसरों के तक बांटना है, और यही हमारा मुख्य ध्येय और उद्देश्य होना है। और लिखा हुआ है तब, तो ये यहां पर करना। अब जब हम इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बार बार, जैसे मैंने कहा आपको कि उन्होंने मन फिराव प्रचार किया, मत्ती उसका 3:2, मत्ती 3:6, मत्ती 3:11, इन सारे स्थानों में योन्ना के प्रचार को आप देखते हैं, मत्ती 3:2, मत्ती 3:6, मत्ती 3:11, जिसको पौलुस यहाँ पर दोबारा दोहरा रहा है, जिसको पौलुस स्मरण दिला रहा है, वो कर रहा है। अब इन सब बातों को देखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए क्या योजना है। अगर कोई आपसे पूछता है क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है, यदि आप सच्चे विश्वासी, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने पापों से पश्चाताप करके उसको प्रभु और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के स्वीकार किया है, आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह संसार से जाएं, स्वर्ग पर उठा लिए जाएं, अपनी सेवा को पूरा करें, उन्होंने इस भ्रम को अपने शिष्य को मिटाने के लिए कुछ शिक्षाएं दी थी, और इसीलिए उसने योहन्ना के 14 में जाने से पहले कुछ बातें कही थी। मैं कुछ स्थल को पद को पढ़ना चाहूंगा, 15 से योहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे। पहली बात, वो सहायक कौन है, वो पवित्र आत्मा सहायक, शब्दों को ध्यान रखिए, वो देगा, सहायक देगा, पवित्र आत्मा देगा जो तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे ना देखता है ना जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा, वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते ग्रहण करते हैं, वो त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। एक समय परमेश्वर सृष्टिकर्ता के समय त्रिएक परमेश्वर थे, लेकिन समय आया जो परमेश्वर देहधारी हुआ, यीशु के देह में होकर के मनुष्य के देह में संसार में रहा, जब वो चला गया अब उसने अपने पवित्र आत्मा दिया है और वो त्रिएक परमेश्वर। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर पुत्र को ग्रहण करते हैं, तो त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वो कहता है मैं, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में होगा। 18 पद, वो कहता मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और तब उसके बाद आगे चल के 23 पद में कहता है, 23 पद में यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है और मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उसे प्रेम करेगा और हम, बहुवचन है हम मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे, हम उसके साथ निवास करेंगे, अर्थात वो हम में वास करता है, हमारे साथ निवास करता है, निवास करता है। इस बात को ध्यान रखें। अन्य भाषा एक वरदान है, बहुत सारे वरदानों में से किसी को परमेश्वर दे सकता है, हम उसके विरोध में नहीं है। अगर किसी को प्रभु अन्य भाषा का वरदान देता है, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन उसके स्वयं के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, और उसका बहुत डोरा नहीं पीटा जाता, बहुत हल्ला नहीं बजाया जाता, और लेकिन वो व्यक्तिगत से परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध के अनुसार है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, पापों की क्षमा मांगी है, प्रभु ने आपके पाप को क्षमा किया है, आप उसके संतान बन चुके हैं, प्रभु आपके जीवन में आया है, वास करता है, तो वो त्रिएक परमेश्वर आप में है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। अब बार बार कोई और चिन्ह की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। हम जितना उसके साथ चलते हैं, जितना उसे मांगते हैं, वो आत्मा में हमें भरपूर करता चलाता है, और आत्मा की भरपूरी हमें सिद्धता में आगे बढ़ाती है, आत्मा की भरपूरी हमें पवित्रता में आगे बढ़ाती है, आत्मा की भरपूरी हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाती है, वो हमारी जरूर है। और इसीलिए बाद में आप देखेंगे बार बार इन प्रेरितों के बारे में लिखा है, और वो आत्मा से परिपूर्ण होते रहे, और वो आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। जब हम आएंगे आगे पढ़ेंगे तो बार बार देखेंगे वे आत्मा से पढ़े। सो आखासों से इस विषय को समझना है। और पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम क्या है, जो वो यूहन्ना उसके 16 अध्याय में बताता है, 7-16 पद में 4-5 बातों को कहता है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो वो आपको पाप के प्रति कायल करेगा। आपके जीवन में झूठ, छल, धोखा, चोरी, लालच, मूर्ति पूजा, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनाज्ञा करता, ये कुछ भी जो परमेश्वर, वो आप उसे अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि जब आपके जीवन में आएगा वो परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करेगा। अगर आपका विवेक आपको कायल नहीं करता है पाप के प्रति, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में गहरा नहीं है। और मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन में, हमारे जीवन में और भी अधिक अपने पवित्र आत्मा के कार्य को गहरा करिए, ताकि वो मेरे के जीवन में पाप के प्रति मुझे और आपको कायल करता रहे और हम धार्मिकता में बढ़ते जाएं। दूसरी बात कहता है, वो सत्य का आत्मा, कह रहा सत्य का आत्मा मार्ग बताएगा, 13 पद में, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा और वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है। ठीक है, हमने सत्य को जाना है, हमने सत्य को स्वीकार किया है, हमने सत्य को अपनाया है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन के जीवन में हमें सत्यता में आगे बढ़ते रहना है। और मेरे प्रियो, कई बार लोग इससे दूर रहना चाहते हैं, सावधान नहीं, प्रभु मुझ पर और आप पर अनुग्रह करे कि हम सत्य को जाने और सत्य के मार्ग को पहचाने और उसमें आगे बढ़ते जाएं। अब तक तीसरी बात वह आगे कहता है कि उन आने वाली बातों को प्रकट करेगा 13 अध्याय में। तब उसके बाद 14 पद कहता है, वो मेरी महिमा करेगा, अर्थात पुत्र की महिमा करेगा। वो पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके जीवन में वास करता है, वो सबसे बढ़कर मेरे और आपके जीवन को इस तरह से बनाना चाहता है ताकि मेरा और आपका परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। तो यह 16 अध्याय में बहुत कुछ ऐसे बताता है किस रीति पवित्र आत्मा का कार्य है। और तब उसके बाद आगे चलते हुए कहता है कि वो उन बातों को प्रकट करेगा जो पुत्र की बातें हैं। तो ये हम इन बातों को देखते हैं, तो पहले पद से लेकर के हम इन बातों को देखते हैं जो पवित्र आत्मा के संबंध में। लेकिन आगे चल करके 9 पद से लेकर 11 पद तक ये लोग आराधना में तर्क वितर्क कर रहे हैं। आगे पद से हम देख पड़ते हैं कि तर्क वितर्क पौलुस लगातार तर्क वितर्क करता रहा। अब एक बात ध्यान रखिए, वहां पर एक पाठशाला है, और वो पाठशाला अगर हम पढ़ू तो अच्छा रहेगा, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं माने और भीड़ के सामने इस पंथ को बुरा भला कहने लगे, तो वो चेलों को लेकर उनसे अलग हो गया और तरनुस की पाठशाला में प्रतिदिन तर्क वितर्क करता रहा। अब जिसको कहना चाहिए कि वो लोग व्यवस्था को सीखते थे, परमेश्वर के वचन को सीखते थे, और उस समय का समय जो रहता था बाइबल के विद्वानों का चाहे या मत है, कहना है कि लोग सुबह से लेकर के लगभग 11 बजे तक अपने काम को क्या करते थे, क्योंकि उधर धूप बहुत होती थी, गर्मी बहुत होती थी, और 11 से 4 बजे तक लगभग वे अपने घरों में रहकर विश्राम करते, और 4 बजे से लेकर के फिर शाम को देर तक वो अपना काम करते थे, कुछ और करते। और पौलुस सुबह के समय में पहले अपना व्यवसाय का काम करता था तम्बू बनाने का, और सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक निरंतर इनके यहाँ जाया करता था और उनके साथ बैठ करके परमेश्वर के वचन के बारे में तर्क वितर्क करता था और व्यवस्था के बारे में तर्क वितर्क करता था। ये उसका कई समय तक चलता रहा, कई समय तक चलता रहा। और लिखा हुआ है 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा, जिससे कि वे जो एशिया में रहते थे यहूदी और यानी सब प्रभु का वचन सुन लिया। एशिया में जो फिलिप के जो इफिसियों के आसपास एशिया का मुख्य नगर है इफिसियों, अभी हम आगे और उसको देखेंगे, उसके आसपास अर्थात वहां पर बहुत सारे लोग उस नगर में आए करते थे, उस स्थान पे आते। और ये तरुण की जो पाठशाला है इसमें भी बहुत सारे लोग इधर उधर से आकर के शिक्षा को प्राप्त करते थे। और पौलुस 2 साल तक लगातार तक उनको वहां पर वचन दे रहा है। इसलिए मैंने कहा कि उसमें सबसे अधिक समय हो रहा है, उसने बहुत घोर परिश्रम किया लोगों को वचन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, वचन को समझाने के लिए ये करा है। और तब न केवल वचन दे रहा है, न केवल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से उसको इस्तेमाल कर रहा है। और पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाता था, और यहां तक कि लोग उसकी देह को स्पर्श करते थे, रुमाल छूते थे करते थे, और दुष्टात्मा निकल जाती थी, बीमार चंगे होते। प्रभु यीशु मसीह की सेवा को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवा के क्रम यह है, प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग, प्रचार करना, शिक्षा देना, चंगाई देना। समय नहीं कि मैं उन पदों को दिखाऊं, लेकिन आप किसी भी सुसमाचार में पढ़ेंगे और बार बार आप देखेंगे प्रभु के सेवा का यही क्रम था। वो प्रचार करता रहा, वो शिक्षा देता रहा, वो चंगाई करता रहा। आज हमने उल्टा कर दिया। आज हम सबसे पहले हीलिंग को लिया, सबसे पहले हीलिंग को लिया। चंगाई है, प्रभु आज भी चंगाई देते हैं, प्रभु के नाम में, प्रभु के सामर्थ्य अधिकार है, प्रार्थना में उत्तर देता है। लेकिन अगर केवल हम चंगाई दे रहे हैं, लोगों को चंगाई तक पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए, क्यों प्राणी उठाए, क्योंकि मानव जाति पापी है, और जो प्राण जो पापी प्राण पाप करेगा उन्हें समर जाएगा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उसके पाप से छुटकारा मिले, उसको उस अनंत की मृत्यु से छुटकारा मिले, उसको उस अनंत दंड से छुटकारा मिले, और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा, पापों के पश्चाताप करने द्वारा, प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगने द्वारा है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर वो कार्य पूरा किया है। तो यहाँ पर भी पौलुस वही कर रहा है, पौलुस प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, फिर बाद में चंगाई करवाना, वही क्रम यहाँ पर भी है। और हम बार बार बात को देखें, बाइबल के सिद्धांत हैं, बाइबल के तरीके हैं, जब हम उन तरीकों को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर के वचन के को और अधिक आदर सम्मान मिलता है। सो मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना न करें, बीमार के लिए प्रार्थना न करें, लेकिन केवल लोग अगर केवल बीमारी की चंगाई के द्वारा प्रभु में आते हैं तो विश्वास में मजबूत नहीं रहते, उनको वचन की भूख नहीं रहती, वचन का ज्ञान नहीं रहता, वो केवल चंगाई 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 की बात करते हैं। लेकिन चंगाई से बढ़कर आपके हृदय में परमेश्वर के वचन का क्यों भूख होनी चाहिए। इसीलिए हमने कुछ समय पहले बीरिया की कलीसिया के बारे में, वचन के बारे में देखा था, और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। सो परमेश्वर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तब आगे चल करके अब मैं एक आगे बढ़ने से पहले प्रश्न ये है कि मेरे और आपके जीवन जो उद्धार का कार्य हुआ, या मैंने और आपने जो प्रभु यीशु मसीह को जाना है, कैसे जाना है? क्या केवल चंगाई के द्वारा? बुरा नहीं है अगर आपने चंगाई के द्वारा प्रभु के पास आए हैं, तो क्या आपने सचमुच उसके बाद अपने पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, सुसमाचार को जाना है? सुसमाचार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आपने उसके बलिदान के अर्थ को समझा है? क्या आपने अपने आप को जाना है कि आप पापी हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो केवल प्रभु यीशु मसीह है? अगर ये नहीं हुआ और केवल आप चंगाई को लेकर चल रहे हैं, आप अपने विश्वास में हमेशा स्थिर नहीं रहेंगे, और जब भी आप दोबारा कभी बीमार हो जाएंगे और आपको चंगाई नहीं मिलेगी तो आप विश्वास से पीछे हट जाएंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रभु से आप प्रार्थना मांगिए, अपने हृदय को जांचिए, अपने मन को जांचिए, अपने जीवन को परमेश्वर सामने रखिए, और कहिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप अपने पवित्र वचन का सामर्थ्य कार्य मेरे जीवन कर लें और हम परमेश्वर के वचन का आदर कर सकें। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा रहा है और परमेश्वर की योजना अनुसार आगे बढ़ रहा है। तब 13 पद से लेकर के हम एक और बात को देखते हैं। जब ये सब कुछ हुआ, परंतु झाड़ फूंक करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों को प्रभु यीशु के नाम से का उपयोग करने का प्रत्येक ये कहकर कर रहे थे, मैं तुमको उस यीशु नाम की शपथ दिलाता हूं जिसका प्रचार पौलुस करता है। वो स्वयं यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने पहले पौलुस को देखा था और उन्होंने पौलुस को उसके सुसमाचार को सुना था, उसके प्रचार को सुना था, उसके चंगाई को देखा। तो समय पहले हमने देखा था एक व्यक्ति था जो समान जादू करने वाला था, वो भी आया, उसने प्रभु के पीछे चलने लगा और बाद में उसने कहा ये पैसा ले लो और मुझे पवित्र आत्मा दे दो। तो उसने सोचा मैं इसको कमाऊंगा। और आज कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु को जानते नहीं है, यीशु के उद्धार का अनुभव नहीं है, यीशु के द्वारा पापों के क्षमा का अनुभव नहीं है, यीशु को उन्होंने अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, लेकिन यीशु के नाम को लेकर चंगाई 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 करने में लगे पड़े। और मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है एक समय आएगा जब हम प्रभु के सामने होंगे, हम कहेंगे प्रभु जी हमने ये किया, आपके नाम से ये किया, आपके नाम से ये किया, आपने के नाम से क्या। प्रभु यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हमने क्या किया है प्रभु को ये मतलब नहीं, लेकिन मतलब ये है कि हमने कैसे प्रभु को पाया है, कैसे प्रभु को स्थान दिया है, कैसे प्रभु को अपनाया है, कैसे प्रभु के साथ रहे हैं, कैसे प्रभु का सम्मान किया है, कैसे प्रभु के भय में जीवन किया है, कैसे प्रभु की पवित्रता में दिन पर दिन हम बढ़ते गए, ये मान रखे। इस बात से मैं यह मनुष्य को तो झुटला सकते हैं, प्रभु को नहीं झुटला नहीं पाए। तब उसके बाद यहाँ पर अब ये लोग करने लगे और क्या कह रहे हैं, हम यीशु के पौलुस के नाम से, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था और ये बहुत बार बार हुआ। तब क्या क्या होता है 14 पद में, और इसके बाद नामक एक यहूदी मुख्य याजक के 7 पुत्र ऐसा ही कर रहे थे, 7 पुत्र जिसके बाद महायाजक उसके पुत्र। अब महायाजक कौन था, ये यहूदी प्रतिनिधि था, यहूदी प्रथा के अनुसार से आराधनालय उनका होता था, वहां पर वो अपनी सेवा दिया करता, सब कुछ था। इसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन उन्होंने देख लिया था, सुन लिया था कि यीशु के नाम से क्या हो रहा है, पौलुस क्या क्या कर रहा है, और उन्होंने इसको अपना जीविका का साधन बना लिया था। मेरे प्रियो, यीशु की सेवा को जीविका का साधन मत बना। प्रभु की सेवा को अगर आप गांव में प्रचार कर रहे हैं और केवल इसलिए प्रचार करते हैं, आप इसलिए सेवक बन गए, इसलिए ऐसे बन गए, आज हर एक जन अपने नाम के आगे पास्टर लगाना चाहता है, हर जन। अगर आप इस प्रकार के पास्टर और प्रचारक हैं कि केवल आपका पेट भर जाए, ये सही नहीं, अच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम का आदर के साथ सही रीति से उपयोग करिए और सच्चाई के साथ सेवा करिए। हमारे बीच में भाई सेवा करने के लिए आते रहे, उन्होंने अक्सर कहा कि अगर ऐसा नहीं तो आप सुसमाचार प्रचार के काम को छोड़ करके मजदूरी करिए, लेकिन अपने ऊपर दंड मत लीजिए। और यहां पर क्या होगा, ये लोग ये कर रहे हैं। तब क्या हुआ 15 पद में, परंतु दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया। कौन उत्तर दे रहा है, दुष्ट आत्मा उत्तर दे रही है। क्या उत्तर दे रही दुष्ट आत्मा, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं पहचानती हूं। और सच है दुष्ट आत्मा प्रभु को जानती है, तभी तो जब उसके लिए प्रार्थना की जाती है डर के मारे भागती है, उसका नाम लेने से थरथराती है, कांपती है, दुष्ट आत्मा जानती है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सच, वो कह रहे मैं पौलुस को भी जानती हूं, मैं उनको भी जानती हूं, पहचानती हूं, पर तुम कौन हो, तुम कौन हो जो यीशु का नाम और पौलुस के नाम से सब कुछ कर रहे हो, मैं तो उनको जानती हूं। और तब क्या हुआ, तब उन दुष्ट आत्मा ने उनको खदेड़ा, और वो दुष्ट आत्मा जिसमें वो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर झपटा और उनको वश में करके उस पर ऐसा प्रबल हुआ कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकलकर भागे। ये दर्शा यीशु का नाम व्यर्थ में मत करो। मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग हैं जो आज बड़े बड़े हीलर हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी अनुभव घटनाएं हैं जिनको मैं आज याद करता हूं। मैं स्थल को पढ़ा था, मुझे लखनऊ की घटना याद हो रही थी, कई सारी घटनाएं कुछ समय पहले बीत चुकी है। और एक भाई को बहुत ज्यादा शौक था दुष्ट आत्मा को निकालने, और एक बार उस दुष्ट आत्मा उसको खूब पटका। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो गांव देहातों में परमेश्वर वचन को कम स्थान देते हैं, लेकिन इस जादू टोने को लेकर, वो जादू टोने का काम कर उनको लेकर लोगों को बहका रहे, बस भीड़ जुड़ जाए, हमारा पैसा मिल जाए, 50 लोग रहेंगे पैसा देंगे, हमारा काम चल जाएगा, सब कुछ वचन, वो जाने या ना जाने कुछ नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन को सिखाने के लिए मेहनत पड़ती है, वचन को सिखाने के लिए टाइम देना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वचन को समझाना पड़ता है, ये करने के लिए तैयार हो, ये करने तैयार हो। बहुत संख्या में बहुत हो लेकिन उनका विश्वास स्थिर ना हो, वो कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, ऐसे से भागता नहीं, साधा नहीं। मेरे प्रियो यहां पर क्या हुआ, अब तब उसके बाद क्या होता है, ये बात इफिसस के रहने वालों के, क्या यहूदी क्या यूनानी, वे सब लोगों में को मालूम ही। अब क्या हुआ, अब इसके द्वारा भी परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। 17 पद में इसके द्वारा भी परमेश्वर अपने सुसमाचार के कार्य को हर परिस्थिति में करना जानता है। हम परमेश्वर के कार्य को बांध नहीं सकते, अगर हम गलत कर रहे हैं परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, वो नहीं छोड़ेगा। मैं गलत कर रहा हूं, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, छोड़ेगा नहीं। और मैं परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप एक मसीह होकर परमेश्वर खिलवाड़ नहीं करते, आप सेवा करते हुए परमेश्वर साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन परमेश्वर अपना कार्य करता है, और क्या कार्य कर रहा है, इधर हम एक स्थिति को देख रहे हैं, दुष्ट आत्मा किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, ये इतने लोग गलत कर रहे थे, लेकिन इन सब कुछ के कारण वहां लोगों को बहच आ गया। और न केवल बहच आ गया, क्या हुआ आगे चल करके, बहच आ गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई होने लगी, जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को मान लिया। एक क्रम देखिए, इसके कारण अभी पौलुस से ज्यादा प्रचार नहीं करा, पौलुस ने तो पहले प्रचार करा, लेकिन कुछ लोग थे जो उसका अपना फायदा उठाना चाह रहे थे और उनको उपयोग कर रहे थे, और उनको उपयोग करते हुए परमेश्वर ने क्या उन्हें दिया, ठीक है उनके साथ व्यवहार किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों परमेश्वर का बहच आया, लोग परमेश्वर प्रभु मसीह की बड़ाई करने लगे, लोगों ने विश्वास किया, और ना केवल विश्वास किया लेकिन क्या करा, उन्होंने अपने कामों को मान लिया, पश्चाताप किया, अपराधों को मान लिया कि हम गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे थे अभी आप आगे चल के देखेंगे, उन्होंने अपने पाप को मान लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने पाप को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, जो अपने पाप को मान लेता है। और कई बार मेरे प्रियो हम पवित्र आत्मा को इतना कठोरता में डाल देते हैं, पवित्र आत्मा में जीवन को कायल नहीं करता, हम पाप को पहचानते नहीं, अपने घमंड में रहते हैं, अपने ज्ञान में रहते हैं, और हम उसमें रहते हुए हम सोचते हैं हम जो कुछ कर रहे सही गलत है, कभी भी परमेश्वर से पूछते नहीं, प्रभु सच्चाई क्या है, दिक्कत क्या है, आप क्या सिखाना चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, नम्र नहीं होते, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है उन्होंने अपने आप को पाप मांगा। कौन थे लोग, ये लोग वो थे जो उसी जादू टूना करने वाले के साथ मिले हुए थे। और तब क्या हुआ, तब लिखा हुआ है मान लिया और उन्हें प्रकट कर दिया, उन्होंने मान के सबके सामने स्पष्ट मान लिया, क्षमा मांग ली, पश्चाताप कर लिया। बहुत से लोगों में से जादू टोना कर क्या करते थे, अपनी अपनी पोथियां लाकर इकट्ठा की और सबके सामने जला दी। जब उन्होंने उनका मुख मूल्य आका तो लगभग 50,000 चांदियों के सिक्के के बराबर थी। और क्या हुआ, इसके प्रकार थे प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ फैलता और प्रबल होता गया। मेरे प्रियो, केवल एक बात है, परमेश्वर के वचन को फैलना है, परमेश्वर वचन को सामर्थ्य के साथ फैलना है और प्रबल होते जाना है, और ये परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य है। ये परमेश्वर कोई भी चीज उस कार्य को नहीं रोक सकी जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार का कार्य था, उसको नहीं रोक सकी। प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ फैलता गया प्रभु को, इन्होंने मान करके अपने सारे पुस्तकों को जला दिया। कौन थे मेरे प्रियो, कौन सी चीज आपके जीवन में है जिसको आज सुबह आप इकट्ठा करके प्रभु के चरणों में कहेंगे, प्रभु मैं इसको अर्पण करता हूं, इन सारे कूड़ों को जला दीजिए, आपका बड़प्पन, आपका धन, आपकी झूठी धार्मिकता, आपका छल का स्वभाव, आपका धोखे का स्वभाव, आपके चोरी, कौन सी चीज है, लालच, कोई कौन सी चीज आपको देखना है जो आपको परमेश्वर से अलग कर करके गलत रीति इस्तेमाल करते, उसको इकट्ठा करके मुझे और आपको परमेश्वर के चरणों में रखना। क्या आज सुबह आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने मन में विचार करते हुए जो आपको परमेश्वर का आत्मा आपके हाथों में आपके हृदय में उंगली रख करके दिखा रहा है, आप कहें प्रभु मैं इसको सब कुछ को इकट्ठा करके आपके चरण में अर्पित कर देता हूं और जला देता हूं। इसलिए जला दिया गया ताकि दोबारा उसको पढ़ाना जा सके। और ये सच है, हमें अपनी उन चीजों को जो हमारे साथ हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें उनको जलाना सीखना है। अगर ये पोथियां निकाल के फेंक देते हैं तो शायद कोई व्यक्ति आता लाके अरे तुम्हारी पुस्तक में पढ़ी है, फिर उनके हाथ में उन्होंने जला दी। राग परमेश्वर मेरी और आपके साथ थोड़ी देर से सोचे, तब आगे जा करके हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब इफिसस में हम जाना चाहेंगे, आगे चल करके इफिसस में आता है। मैंने बताया इफिसस बहुत बड़ा नगर था उसके साथ साथ है, लेकिन यहाँ खास बात थी, जैसे रोम में डायना का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आर्टेमिस का मंदिर था। और आर्टेमिस का मंदिर बहुत विशाल मंदिर था, और जिसने इसको बनवाया था आर्टेमिस का मंदिर, आर्टेमिस नाम का एक सुनार था जिसने इसको बनाया था, और बनते बनते मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया था कि बहुत सारे लोग तीर्थयात्री यहाँ पर आकर के इस मंदिर में आकर के यहाँ पर इस देवी की उपासना करते थे, इस देवी की उपासना करते थे, जिसके बारे में आप आगे चल के देखेंगे 28 के पद में लिखा हुआ है। उन्होंने सुना तो क्रोध में आकर चिल्लाकर कहने लगे, इफिसियों की देवी आर्टेमिस महान है, आर्टेमिस का नाम। अब ये जब ये मंदिर हो और अब सुसमाचार जब प्रचार होता और लोग जब सुसमाचार को सुन रहे थे, तो ये जो मंदिर का मुखिया था और लोग वहां पर जो पुजारी थे जो उस मंदिर से अपना जीविका चला रहे थे वो बहुत विचलित हो गए। कारण क्या था? लोगों का मत है ये कि वहां पर लोग देवी की मूर्ति, छोटी छोटी मूर्ति बनाकर अर्पण किया करते थे, चांदी की सोनी की मूर्ति बनाकर अर्पण किया करते। लोग जब बनवाते थे तो उनसे पैसा मिलता था, उनका चांदी सोना बिकता था। जब वहां मंदिर पे आता था तो मंदिर से निकल करके फिर वो सुनार के पास चला जाता था, फिर सुनार उसको गलाता था, फिर वो बिक्री होता था, और इस तरह का धंधा चल रहा था। वहीं चढ़ाना, वहीं से निकलना, वहीं बेचना, वहीं चढ़ाना, वहीं से निकलना, वहीं बेचना, और ये एक व्यापार का धंधा इन्होंने बना रखा। बहुत सारे स्थानों में आज भी है, बहुत सारे स्थानों में आज भी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन में आप गोवा में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे चर्चेज आपको मिलेंगे जहां पर इसी प्रकार के हैं। जब उन्होंने देखा तो ये लोग सब बौखला गए, और बौखलाने के बाद आप पौलुस को मारना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने क्या नाम पौलुस के जो साथी थे उनको पकड़ा और उनको पकड़ के उनको मारना चाहा, और उनको 29 पद में लिखा हुआ है, नगर में उल्लड़ मच गया और लोगों ने गयुस और अर्तिखुस को, आगे पत्री में इनका नाम पाते हैं, गई उसके बारे में भी पाते हैं, उनके बारे में पाते हैं जो बाद में आगे चलकर उन्होंने पौलुस के साथ सेवा में संभागी हुए के संगी यात्रियों को भी मसूदे ने लिया है और घसीटा, और वे एक साथ दौड़कर रणशाला में गए। अब ये लोग इनको लाके सब उनको चपट गए, मारने पीटने के, इनको सतावने का सामना करना। लेकिन ध्यान दीजिए जो मैं खास रहा हूं, पर पौलुस भी जाना चाहता था, पौलुस भी जाना चाहता, पौलुस चाहता था वो इनको बचा ले, इनको बचा ले। लेकिन क्या होती इस पद में, पौलुस ने भीड़ को जाना चाहा और चेलों ने उसे जाने नहीं दिया। 31 पद, तथा एशिया के कुछ अधिकारियों ने जो उसके मित्र थे उसे कैलवा भेजा और बार बार निवेदन किया कि वो रंगशाला में जाने का जोखिम न उठाए। एशिया में पौलुस को लोग जानते थे, और ये जो अधिकारी थे ये सब विश्वासी नहीं थे, कुछ यूनानी प्रभुओं में से थे, जो यूनानी प्रभुओं में से आकर के यहूदी धर्म को ग्रहण करते थे और अधिकारी पद को प्राप्त करते थे। हम पहले भी बहुत बार इस बात को समझ चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन एक विचार सामने आता है, पौलुस ने अपने आप को किस प्रकार से उन लोगों के साथ भी एक अच्छे मेल में रखा था। सुसमाचार से उसने समझौता नहीं करा, लेकिन इन अधिकारियों के साथ उसकी मित्रता थी। हम संसार में हैं, संसार के नहीं। आज भी कई बार जब हम उन अन्य जातीय अधिकारियों के साथ, जैसे गांव के प्रधान हैं या मुखिया हैं, कोई भी है, उनके साथ संबंध अच्छे रखें। ये नहीं कि हम उनकी बातों का समझौता कर रहे हैं, सुसमाचार का हम समझौता नहीं कर रहे हैं, अपने विश्वास का समझौता नहीं कर रहे हैं। वो हमारे जीवन को जानते हैं, मेरे जीवन बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिसको मैं बांट सकता हूँ, लेकिन वो मित्रता हमारे जीवन के लिए हमारी रक्षा और सुसमाचार के फैलाव का कारण बनती है। और यही पौलुस के साथ हुआ। पौलुस को उन्होंने बचाया, पौलुस को उन्होंने संभाला, पौलुस ने उनको सलाह दी कि तुम वहां मत जाना, वहां जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन पौलुस ने किस रीति से, इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस डर रहा है, डर नहीं रहा था पौलुस डर। और लोग बहुत चिल्ला करके सब कुछ करते, लेकिन आगे चल कर देते हैं कि जो कुछ भी होता है वो लोग पौलुस के पक्ष में करते हैं। यदि ये सच में ये लोग मानते थे, देवी जो है वो आकाश से गिरी देवी, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, मालूम चलेगा कि लोग बोलते थे कि देवी जो है वो आकाश से गिरी है और हमने इसको मंदिर में रखा और हमें इसकी उपासना कर। कुरुंते में बहुत बड़ा मंदिर था जिसके बारे में पिछली बार हम देखा था। और पूरी बाइबल में हम बार बार देखते हैं, जो आज हम मंदिर देख रहे हैं नई चीजें नहीं है, ये बहुत आरंभ से है। और हम सोचते हैं आज हम विश्वास में होकर सामना कर रहे हैं, नहीं, हमारे पूर्वजों ने विश्वास में सामना करा। जब वे प्रभु में आए, मेरे प्रियो, कोई भी जन, चाहे वो मसीह परिवार से हो, चाहे अन्य जाति परिवार से हो, किसी परिवार से हो, अगर वो सच्चाई के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहता है तो सुसमाचार के लिए उसको कष्ट उठाना पड़ेगा और दुख का सामना करना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं अरे मैं मस हिंदू परिवार से आया था इसलिए ऐसा, नहीं, मैं फलाने परिवार से आया था इसलिए, नहीं जी, आप किसी, लेकिन आप किसी भी प्रभु से यदि प्रभु का सच्चाई के साथ आप आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और वो मेरे और आपके लिए आशीष कर रहा, आपको विरोध का सामना करना, आपको कष्ट का सामना करना, हो सकता आपको जेल जाना पड़े, हो सकता आपको ताड़ना सहनी पड़े, हो सकता आपको झूठा दोषण ऊपर लगा जाए, हो सकता आपको गाली सुननी पड़े, हो सकता कुछ और करना पड़े, लेकिन वो समय जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में दृढ़ता के साथ खड़े रहने का है। पर पौलुस के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर भी इन सब कुछ के बाद भी पौलुस स्थिर रहा और परमेश्वर का वचन फैलता रहा। और राजपाल ने उस पौलुस को, आगे चल के जो आप पढ़ेंगे तो राजपाल ने जो लोग अभियोग लगा रहे थे उस पर दोष लगा रहे थे, राजपाल ने साफ कहा उसने कोई ऐसी बात नहीं करी है जिसमें हम उसको दोषी पा सके, उसमें दोषी पा सके। और मेरे प्रियो 40 पद में लिखा है, क्योंकि हमें सचमुच इस बात का डर है कि आज ही दंगे के आरोप कहीं हम पर ना मर जाए, क्योंकि इसके होने की का कोई कारण नहीं, अतः हम इस उपद्रवी भीड़ को जमा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। ये कहकर उन्होंने सभा भंग कर दी। कितने रीति से राजपाल ने सारी चीजों को अपने नियंत्रित लिया और करते हुए लोगों को समझाते हुए सारी चीज भूल को शांत करते हुए सभा को भंग कर दिया और पौलुस को आजाद कर दिया। तब हम जाते हैं कि आगे भी कुछ बातों को देखेंगे जो 20 अध्याय में है। लेकिन तीन मुख्य बातें। पहली बात, जो पहले बात, क्या तुमको पवित्र आत्मा मिला? आप कैसे जान सकते क्या आपको पवित्र आत्मा, क्या अन्य भाषा नहीं, पवित्र आत्मा मुझे और आपको पवित्रता के जीवन में बनाता है, मुझे और आपको अंश परमेश्वर के रूप में बनाता है। यदि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में संसारिकता, शारीरिकता, अपवित्रता, सारी चीजें, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा काम नहीं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए, भ्रमित नहीं होइए। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको आपने ग्रहण किया है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास करता है। दूसरी बात, प्रभु के सुसमाचार को बिना अनुभव के, बिना सच्चाई को जाने या उद्धार के अनुभव, यीशु को नाम को लेकर के मात्र प्रचार मत करें। यदि आपके जीवन उद्धार का कार्य नहीं है, सुसमाचार को आपने नहीं जाना, परमेश्वर से पापों की क्षमा को नहीं प्राप्त करा, आपको कार्य मत करें। आपके लिए सोचने में क्या ऐसा तो नहीं है जो आप ऐसा कर रहे हैं। और तीसरी और अंतिम बात, चाहे कैसी भी दशा हो, कैसी भी दशा हो, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और सुसमाचार का कार्य रुकता नहीं बल्कि फैलता चला जाता है। चाहे कितना बड़ा कोई हो, किसी के मंदिर बहुत बड़ा था, लोग बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन उनकी योजना कुछ और थी, उनकी इच्छा कुछ और थी, व्यापार का काम था, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सके और परमेश्वर ने अपने सेवक की रक्षा की और सुसमाचार फैलता। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि जब हम दिन पर दिन प्रश्न को बदलते देख रहे हैं, हम खिले ना पड़े, परंतु प्रार्थना करें, समर्पित हो और हमारे सब कुछ के द्वारा इस प्रकार से सुसमाचार का कार्य हो सके। कितने गांव हैं जहाँ पर सुसमाचार पहुंचना है, जहाँ पर सुसमाचार पहुंचना है। हम प्रभु का धन्यवाद है, आप जो कि इस कलीसिया में है, शायद आप उस गांव में आप नहीं जा सकते, लेकिन आप जो अपना सहयोग राशि देते हैं, आप जो धन देते हैं, वो धन उन सेवकों के पास जाता है जो आज गांव में रहकर से सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और इसलिए आप अपने जीवन में ये समर्पण लीजिए कि आप सुसमाचार फैलाव में किसी न किसी से आप निरंतर सहभागी होंगे और प्रभु का कार्य बढ़ता चला। सो परमेश्वर सहायता करें। जब हम आगे 20 अध्याय में जाएंगे तो 20 अध्याय में एक और हम कुछ बात को देखते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। सो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। आइए प्रार्थना।